نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کا بھی مڈ آ چکا ہے, یعنی یہ عشرہ بھی صرف آدھا باقی رہ گیا. امام ابن قیم نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی, بہت ہی اچھی لگی مجھے, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, کہ فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف 10 راتیں ہیں, اگر لیلۃ القدر پورے سال کی کوئی ایک رات بھی ہوتی تو میں اس کو پانے کے لیے سال بھر قیام کرتا, یعنی پورے سال کی راتوں میں قیام کرتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ پورے سال میں کوئی ایک رات ہے. سبحان اللہ, کیا شوق تھے ان کے اس رات کو پانے کے لیے, اور ہمارے لیے تو صرف 10 راتیں ہی ہیں کہ جن میں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اور تھوڑی سی محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا قیام اور صیام, یہ راتوں کو جاگنا اس کے شوق میں, اس کا ذکر کرنے میں, اس کی عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور لیلۃ القدر کی عبادت ہم سب کو نصیب فرما دے, ان راتوں میں ہماری بخشش فرما دے. چلتے ہیں اپنی ڈائری کی طرف. آج اس میں ہم چوتھا پیج دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری اس بہن نے ہمیں کیا پیغام دیا. کہتی ہیں, آج بچے مجھے ملنے آئے تھے, بیٹے نے بتایا کہ اگلے ہفتے سے رمضان شروع ہو رہا ہے. ایک سال گزر بھی گیا رمضان کو, پچھلے رمضان تک میں اچھی بھلی تھی اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اگلا رمضان میں اس حال میں کروں گی. جیسے زندگی کے باقی رمضان لاپرواہی میں گزرے تھے, ایسے ہی پچھلا رمضان بھی گزار دیا. مسجد میں سنتی تھی وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری رمضان ہو, مگر مجھے کہاں یہ خیال تھا کہ یہ بات میرے لیے بھی ہو سکتی ہے. میں تو اچھی بھلی تندرست تھی, میں سوچتی تھی میری عمر ہی ابھی کیا ہے. خود کو ینگ ظاہر کرنے کی ہر کوشش کرتی تھی. اب کہ رمضان آ تو رہا ہے اور میں زندہ بھی ہوں, مگر یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے, بس ایک بے بسی ہے, ایک محتاجی ہے, ایک لاچارگی ہے. میں تو اس میں اٹھ کر بیٹھنے سے بھی قاصر ہوں, کہاں یہ کہ کوئی عبادت صحیح سے کر سکوں. وقت کیسے بدل جاتا ہے, وقت کیسے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. آج اگر ایک حالت ہے تو کل بالکل دوسری ہو سکتی ہے, جس کا کبھی انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. مجھے ایسے لگا کرتا تھا کہ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے وہ صدا میرے پاس رہے گا, مگر کتنی جلدی سب کچھ ساتھ چھوڑ گیا. قیامت میں تو سب چھوڑ ہی جائیں گے, یہاں دنیا میں بھی بہت ساری نعمتیں زندگی میں ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. غلطی تو میری ہے جس نے بھروسہ کیا ان چیزوں پر. میں نے تو یوں سمجھا ہوا تھا جیسے میں نے ان کو خرید ہی لیا اور اب یہ میری ملکیت میں ہے. بھول گئی تھی کہ یہ تو امانت ہے, کسی نے دی ہوئی ہیں یہ طاقتیں, یہ صحت, یہ سب امانت تھی. ہماری ٹیچر بھی تو ہمیں کلاس میں یہی بتایا کرتی تھی, مگر تب امانت کا لفظ سمجھ نہیں آتا تھا. واقعی آج سمجھ آئی ہے, امانت تو دینے والا کبھی بھی لے سکتا ہے. اس نے کبھی یہ کہا کہ میں بڑھاپے میں ہی لوں گا, یا میں تمہیں بتا کے لوں گا, یا مرتے دم تک نہیں لوں گا, یہ کب کہا اس نے؟ غلطی تو میری ہے جو اس خوش فہمی میں مبتلا رہی. اگر یہ بات اس وقت سمجھ آ گئی ہوتی تو صحت کی نعمت کو امانت سمجھ کے جلدی جلدی استعمال کرتی، کسی جگہ لگا لیتی، اپنی آخرت سنوار لیتی۔ یہ سوچ کر کے پتہ نہیں کب چھن جائے۔ پچھلے رمضان کو پھر میں زندگی کا بہترین رمضان بنا لیتی، صرف 27ویں کا انتظار نہ کرتی، ساری 10 راتیں عبادت کرتی، نمازیں خوب اچھی طرح پڑھتی، لمبے لمبے قیام کرتی، بہت سارا قرآن پڑھتی۔ مگر میں نے جیسے باقی زندگی گزاری، اسی طرح رمضان بھی بہت لائٹ لیا۔ کبھی خود کو میں نیکی میں زیادہ تھکاتی نہیں تھی، کبھی خود کو نیکی میں دوڑاتی نہیں تھی، یہی سوچتی رہتی تھی اتنا بھی کر لیا تو کافی ہے نا، زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو ایسے سمجھتی تھی جیسے ہزاروں رمضان میری مٹھی میں، مگر پتہ نہیں تھا کہ یہ آخری رمضان ہے جو میں صحت کے ساتھ دیکھ رہی ہوں۔ اور مجھے اپنی زندگی کے پچھلے رمضان بھی یاد آنے لگے ہیں۔ جب میں کالج میں تھی تو 2 بار رمضان ایگزامس کے بیچ میں آ گیا، تب بھی میں نے لاپرواہی سے کہا تھا اب میرے پیپرز ہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور ابا نے بھی لاڈ میں کہہ دیا ہاں ہاں بیٹا بعد میں رکھ لینا۔ اما نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب میں نے شور مچایا کہ اگر فیل ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا، اب میں پڑھوں یا روزے رکھوں، میرے پیپر خراب ہو جائیں گے، اس پر وہ بھی چپ ہو گئی۔ اما بہت زیادہ دین کا علم نہیں رکھتی تھی، لہٰذا وہ مجھے زیادہ سمجھا نہیں سکی۔ نہ کسی نے یہ اہمیت بتائی کہ یہ جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ایک روزہ، ساری زندگی بھی روزے رکھتی رہوں گی تو اس کو پورا نہیں کر سکوں گی، نہ خود سمجھ تھی، نہ کوئی بتانے والا تھا۔ ناپاکی کے دن آتے تو ہر سال روزے چھوٹ جاتے، مگر تب بھی کوئی نہیں سمجھاتا تھا کہ ان کو پورا کرنا ہے۔ جب بچے ہوئے تب بھی روزے رہ گئے، اب تو یاد بھی نہیں کتنے روزے گزرے جو میں نے رکھے نہیں۔ جب پھر قرآن پڑھنے لگی تو پتہ چلا کہ یہ پورے کرنے تھے، تب تھوڑی سی کچھ فکر ہوئی، کچھ نہ کچھ فدیہ دینے کی بھی کوشش کی تھی، مگر کوئی خاص حساب نہیں لگایا تھا، کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، بس کچھ پیسے بھیج دیے تھے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ دراصل ہر کام میں لاپرواہی ہوتی تھی، کبھی ایسے تو زندگی جی ہی نہیں تھی جیسے جانے والا جیتا ہے، جیسے مسافر جیتا ہے۔ مسافر کی طرح زندگی گزاری ہوتی تو ہر چیز کو کیئرفلی حساب لگا لگا کے پورا کرتی، ایک ایک روزے کا فدیہ دیتی۔ اگر مسافر کی طرح زندگی گزاری ہوتی تو وہ روزے جو امتحان کے دنوں میں چھوڑ دیے تھے ان پر روتی، ان پر توبہ کرتی، ان پر ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہتی، مگر لاپرواہی سے ہمیشہ کہہ دیا کرتی تھی ہاں تو پتہ جو نہیں تھا تو رہ گئے بس، جیسے کوئی بڑا نقصان ہی نہیں ہوا۔ آج صبح سے نہ جانے کیوں مجھے بار بار اپنے قصور یاد آ رہے ہیں، اپنی جوانی کی غلطیاں یاد آ رہی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے وہ گناہ بھی یاد آ رہے ہیں جن کو میں بھول چکی تھی، جن کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ اور اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنا درد ہے دل میں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ سب باتیں جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، وہ بھی پتہ نہیں ذہن کے کون سے کونے میں جو دفن ہو چکی تھی، वो अब याद आने लगी हैं। अल्लाह मुझे वो क्यों याद करवा रहा है? छोटी छोटी बातें भी, जबकि मैं तो उनको भूल चुकी थी। क्या अल्लाह ताला मुझे कुछ बताना चाहता है? वो जो माजी की भूली बिसरी दास्तानें बन चुकी थी, वो अब मुझे याद आ रही हैं। साल हा साल पुरानी बातें। सच है कयामत के दिन वाकई पूरी जिंदगी की फिल्म नजरों के सामने चल जाएगी। अगर आज मुझे ये तमाम बातें याद आ रही हैं, तो उस दिन क्यों ना आएंगी? वो दिन जब हर भेद खुल जाएगा, उस दिन अपनी जिंदगी के कच्चे छट्टे भी याद आएंगे। मैं क्या कर बैठी, आंसू मेरी आंखों से छलकने लगे। सब कुछ ही तो मेरे हाथों में था, मगर कितनी तेजी से फिसल गया और मुझे पता भी ना चला। अब तो यकीन भी नहीं आता कि कभी सेहत वाले दिन भी हुआ करते थे। कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया, सेहत गई तो सभी चला गया। ये 55 साल जिंदगी के कैसे गुजर गए, गुजरे नहीं उड़ गए। अभी कल की बात है, मैं तो खुद फ्रॉक पहने हुए एक बच्ची थी। फिर स्कूल कॉलेज पढ़ाइयाँ, इधर बैठे उधर बैठे, इसमें बचपन और जवानी गुजरे। शादी हुई, शादी के 23-24 साल गुजर गए और पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चला। कल की बात लगती है जब मैं ब्याह के आई थी। फिर अल्लाह ने माँ बनाया, हर बच्चे की पैदाइश का दिन मुझे याद है। उनकी छोटी छोटी शरारतें, उनके पहली दफा बोलना, उनकी मासूमियत। अब वो कितने बड़े हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया वो वक्त। देखते ही देखते कहाँ नन्हे नन्हे से होते थे, अब इतने बड़े हो गए कि मुझे समझाते हैं, अम्मी ऐसे नहीं ऐसे। जिनको मैंने बोलना चलना ये सब सिखाया, खाना पीना सिखाया, आज ये माँ को सिखाते हैं आपने कहाँ क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, जमाने में चलना कैसे है। पता भी नहीं चला कब उनका बचपन ख़त्म भी हो गया और कब वो शादियों के काबिल भी हो गए। सारी जिंदगी मेरी नज़रों के सामने ऐसे घूमती है जैसे कोई तेज़ रफ्तार मूवी है जो बस 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाती है और देखने वाला हाथ झाड़ के उठ के खड़ा हो जाता है। मुझे तो लगता है मैं एक तमाशाई की तरह देखती ही रह गई और जिंदगी तेज़ रफ्तार ट्रेन की तरह मेरी नज़रों के सामने गुजर के चली भी गई। वाकई हमने जो कुरान में पढ़ा था कितना सच था कि जिंदगी चंद रोज़ा सामान के सिवा कुछ नहीं है। उस वक्त कहाँ ये बात समझ आती थी, आज सब बातें समझ आने लगी हैं और बहुत अच्छी तरह समझ आ रही हैं। ये जिंदगी तो एक धोखा है। जब मैं खुद टीनेजर थी तो 25 साल की लड़कियां भी मुझे बहुत बड़ी लगती थी। जब खुद 25 साल की हुई तो सोचा नहीं ये तो कोई उम्र ही नहीं है, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। फिर 40 साल की औरतें बहुत बड़ी आंटियां लगने लगी। कोई अगर कहता था फलां की अचानक वफात हो गई सिर्फ 40 साल का था, तो मैं सोचा करती थी भला इतना बड़ा तो था, 40 मुझे बहुत बड़ा नंबर लगता था, मगर जब खुद 40 की हुई तो लगने लगा ये तो अभी कोई उम्र ही नहीं है। जब पहली बार मुझे किसी ने बाजी से आंटी कह के पुकारा तो इतना सदमा हुआ कि लो भला मैं कोई आंटी हूँ, हाँ हाँ मगर मैं भूल गई थी कि मैं ये बाजी से आंटी तक का सफ़र तय कर चुकी हूँ। हाँ दिल इसको मानता नहीं था। कब तेज़ी से वक्त गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला। और 40 के बाद तो मुझे होश आ जाना चाहिए था, ज़िंदगी बदल जानी चाहिए थी। आखिर 40 एक उम्र होती है जिसमें मैच्योरिटी आ जाती है, मेरे रंग ढंग बदलने चाहिए थे। मगर क्या करूं, खुद को यंग साबित करने का जो जुनून मुझे सवार था उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना तो खुद ज़हनी तौर पे इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, ना किसी और को करने दिया, ना खुद ये माना कि आगे सफ़र थोड़ा रह गया है, अब मैं डाउन द हिल हूँ, ना किसी और को ये बात कहने दी। मैंने तो खुद को खुद ही धोखे में रखा कि अभी मेरी उम्र ही क्या है। इसी खुशफहमी में अगले 10 साल और गुजर गए। जब 50 की हुई तो सोचा, लो मेरे से भी ज़्यादा बड़ी उम्र वाली कितनी जिंदा दिल है, तो मुझे क्या है। 50 साल की होकर भी मेरी सोच ना बदली, ना मेरे शौक बदले, ना तरीके बदले। वो ही जो 30 साल की उम्र में थे वो ही 50 में भी थे। शायद आईना इंसान को उसकी उम्र खोल खोल के बताता है, मगर उसका दिल कहीं वही 20-25 साल में अटका रह जाता है। वो कभी भी अपने आप को तस्लीम कर ही नहीं पाता कि मैं ज़िंदगी को तेज़ी से गुजार के साल हर साल तय कर रही हूँ, अपने इख्तिताम की तरफ जा रही हूँ। इंसान वाकई अपने आप को कितना बड़ा धोखा देता है। वो वहीं खड़ा रह जाता है ज़हनी तौर पे, जबकि जिस्मानी तौर पर वो अपने कब्र के करीब पहुँच जाता है। मुझे तो शायद और 20 साल भी मिल जाते तो लगता है ऐसे ही गुजार देती। मुझे कहाँ होश आना था। जिसको दुनिया अपने अंदर मस्त कर ले फिर कम ही ऐसे लोगों को होश आता है। जो खुद को खुद से धोखे में रखना चाहें फिर कौन उनको होश में ला सकता है। मुझे कहाँ याद था कि बीमारियाँ उम्र नहीं पूछा करती आने से पहले, और ना ही मौत पूछती है कि कितनी उम्र है। ये चीज़ें तो जब आती हैं तो इंसान को उसकी असलियत बता देती हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो। सुना है कि आखिरत में जाके लोग कहेंगे बस एक दिन ही ठहरे या दिन का कुछ हिस्सा। मैं क्या बताऊं, आखिरत तो अभी आगे है। मैं तो अभी से जान गई हूँ कि ये दुनिया की ज़िंदगी वाकई एक दिन या इसका कुछ हिस्सा ही था। आप सोच रहे होंगे मैंने 50 साल से ऊपर ज़िंदगी गुजार दी, हाफ अ सेंचुरी में ज़िंदा रही हूँ, फिर भी मैं ये कह रही हूँ। हाँ खुदा की कसम ये बहुत मुख्तसर है, मैं सच कह रही हूँ। पता भी नहीं चला वक्त गया कहाँ, तुझे ये ज़िंदगी ढूंढ के लाऊं कहाँ से। एक शराब था जिसके पीछे मैं भागती चली जा रही थी, बस ये मिल जाए तो ज़िंदगी ज़बरदस्त हो जाएगी, वो मिल जाए तो क्या बात हो जाएगी, ऐसा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी तरह भागते 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 एंड आ गया, और अब एंड पर आके पता चल रहा है कि वो सब शराब था। जितना उसके पीछे भागती जाती थी उतना ही वो दूर जाता था। एक ख्वाहिश पूरी होती थी तो दूसरी सामने खड़ी होती थी, दूसरी पूरी करती थी तो तीसरी सर उठा लेती थी। देर वॉज नो एंड टू इट। मगर मुझ जैसे दीवानों को कहाँ ये बात समझ आती है। हमें समझ तब आती है जब सफ़र ख़त्म हो जाता है, फिनिश लाइन सामने नजर आने लगती है, फिर मुझ जैसे लोग हैरान परेशान खड़े रह जाते हैं कि इतनी जल्दी बस खत्म भी हो गया सफर। और मुश्किल तो ये है कि इस सफर में यू टर्न नहीं है कि दोबारा वापस जाके शुरू कर लूं, इसमें अब सिर्फ आगे ही जाना है। मेरे अंदर गोया एक शोर था, बेख्तियार जैसे मेरा दिल चीखने लगा, कोई है जो मुझे समझाए कि अब मैं क्या करूं, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे, मुझे कोई तदबीर बताए, मुझे जाने का गम नहीं है, मगर मुझे ये गम है कि मैंने जिंदगी जैसी कीमती चीज को गंवा दिया, मैंने हीरे जैसे लम्हात को ठीकरियां जमा करने में लगा दिया। मैंने करना क्या था और कर क्या दिया? मैं वो मुसाफिर हूं जिसको मंजिल पे जाके होश आया कि रास्ता कोई और था। मैं आप लोगों से पूछती हूं, आप लोग सब गरीबों मोहताजों पर तरस खाकर उनकी मदद करते हैं, क्या मेरी मदद नहीं करेंगे? मुझसे ज्यादा गरीब तो कोई हो ही नहीं सकता जिसने अपनी सारी जिंदगी खो दी। आपके इर्द गिर्द रहने वाले गरीब तो सिर्फ रोटी पानी और दुनिया की आसाइशों से महरूम है। उस गरीब के बारे में आप क्या कहेंगे जो सेहत और वक्त जैसी कीमती नेमतों से महरूम हो गया? दुनिया के इन गरीबों ने तो दुनिया की चंद रोजा आसाइशों को खोया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे जिसने हमेशा की आसाइशों को खो दिया? क्या मेरे लिए कोई जवाब है आपके पास? रात बहुत गहरी स्याह थी, पता नहीं रात का क्या टाइम चल रहा था, कौन सा पहर था। मैंने दीवार के ऊपर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा तो 3 बजा रही थी। बाहर से हल्की हल्की बूंदाबांदी की आवाजें आ रही थी। कमरे में एक धीमी रोशनी के सिवा कुछ नहीं था, अंधेरा था। मुझे ख्याल आया ये कबूलियत दुआ का वक्त है, ये तहज्जुद का वक्त है, मेरे लिए इस वक्त में उठना कितना मुश्किल हुआ करता था। मुझे याद है कभी सोचती भी थी तब भी उठा नहीं जाता था, और आज देखो कैसे जागी हुई हूं। साथ ही मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग गईं। या अल्लाह, मैं किसको अपनी नाकामी की दास्तान सुनाऊं? सारा जहान मीठी नींद सो रहा है, कोई भी मेरे पास नहीं, किससे कुछ कहूं, कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय तेरे। किसी को सुनाने के लिए तो बोलना पड़ेगा, और मैं तो अब बोलने से भी थक जाती हूं, मगर ऐ अल्लाह, तुझे सुनाने के लिए तो आवाज नहीं चाहिए, तू मेरी दिल की आवाज को भी सुनता है। मेरे पास सिवाय शर्मसारी के और कुछ नहीं है। ऐ वो रब जिसने कभी हार देखी नहीं है, तू उसके साथ क्या मामला करेगा जो पूरी जिंदगी हार के आ गई है? ऐ वो रब जिसने कभी मोहताजी देखी नहीं, तू उसके साथ क्या सलूक करेगा जो खाली झोली लिए पड़ी है? ऐ वो रब जिसने कभी बेबसी नहीं देखी, तेरे सामने एक बेबस तरीन बंदी है जिसने सब कुछ लुटा दिया, जिसके पास खोटा सिक्का भी नहीं है जो तुझे दिखा सके। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मेरी हिचकी बन गई थी, मैं अपने जिस्म के दर्द को तो बिल्कुल भूल ही गई थी। इस वक्त तो मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था, ऐसा गम था जिसकी दवा किसी के पास नहीं थी। ये दुनिया कैसी जगह है कि यहां आज सब कुछ कमा के भी मैं खाली हाथ हूँ, बैंक अकाउंट्स रख के भी मैं मुफलिस हूँ, बड़े घरों के होते हुए भी मैं फकीर हूँ। वाकई जिसने यहाँ पाया उसने भी खोया, और जिसने खोया उसने तो खोया ही। यहाँ जो जीत गया वो भी हारा हुआ है, और जो हार गया वो तो है ही हारा हुआ। यहाँ की कामयाबी भी नाकामी है, और नाकामी तो है ही नाकामी। लोगों, तुमने असल फकर देखना है ना, तो मुझे देख लो। फकीर वो नहीं है जो पैसे पैसे का मोहताज हो, असल फकीर वो है जो जिंदगी के 40-50 साल गुजार कर और जब किनारे पे आके खड़ा हो तब भी नेकियों का मोहताज हो। इसका फकर फिर कौन दूर करेगा। ये थी आज की दास्तान, बहुत सोचने का मकाम है इसमें हम सब के लिए, और अल्लाह ताला ऐसे पछतावों से हम सबको बचाए। आज की जो दुआ है बहुत प्यारी दुआ है, और दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा। ए अल्लाह, हमारे सब कामों का अंजाम अच्छा कर दे, क्योंकि काम कितना भी अच्छा हो अगर उसका अंजाम अच्छा नहीं है तो वो काम किसी काबिल नहीं है। हमें शायद बहुत सारे काम बहुत अच्छे लगते हों, लेकिन अच्छा कौन सा है? जिसका अंजाम अच्छा हो। तो अल्लाह सारे कामों का अंजाम हमारा अच्छा कर देना, चाहे वो कोई हम नेकी के काम समझ के कर रहे हैं, चाहे कोई दुनियावी काम है, सब कामों का, चाहे बच्चों के रिश्ते कर रहे हैं, चाहे कहीं कारोबार कर रहे हैं, चाहे किसी के साथ मामला कर रहे हैं, सब में अंजाम अच्छा करना। वअजिरना मिन खिज़्यि दुनिया, ऐ अल्लाह दुनिया की रुसवाई से बचाना। वअज़ाबिल आखिरा, और आखिरत के अजाब से बचा लेना। तो बहुत प्यारी दुआ सारे ही कामों के लिए, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा ले। आज हम अपनी दुआएं इंडिविजुअली मांगेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारे पास अभी वक्त है, ये कबूलियत दुआ का टाइम है, तो इसमें खूब खूब दुआएं मांगिए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।